यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरवन यमुना तीरवन राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन बल्लभ गिरिवर यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वन यमुना तीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण
नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की गाय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासनी गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाशाम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। मायापुर धाम की जय। पंढरपुर धाम की जय। गंगा मई जमुना मई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे और गरिष्ठ संबंधी घोड़ी दौल गरिष्ठ संबंधी घोड़ी दौल और गरिष्ठ श्री गुरु श्री गौरांग और गुरु श्रील प्रभु ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंध अध्याय पहला श्लोक पहला। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथं मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। राजोवाच प्रियव्रतो भागवतः आत्मराम कथं मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। राजोवाच प्रियव्रतो भागवतः आत्मरामः कथं मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्मबन्धपराभवः। कर्मबन्धः पराभवः। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मरामः कथं मुने गृहे भ्रमतयन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः। राजोवाच कर्मबंध पराभव राजोवाच प्रियव्रतो कथं मुने यन्मूलः राजा उवाच राजा परीक्षित ने कहा प्रियव्रतः राजा प्रियव्रत भागवतः परम भागवत आत्मरामः आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने वाला कथम क्यों मुने हे मुनि गृहे घर पर अरमत भोग किया यन्मूलः जिसे मूल कारण मानते हुए कर्मबंधः सकाम कर्मों का बंधन पराभवः उद्देश्य की पराजय अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा हे मुनि परम आत्मदर्शी भगवत भक्त राजा प्रियव्रत ने ऐसे गृहस्थ जीवन में रहना क्यों पसंद किया जो कर्मबंधन सकाम कर्म का मूल कारण तथा मानव जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाला है। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा हे मुनि परम आत्मदर्शी भगवत भक्त राजा प्रियव्रत ने ऐसे गृहस्थ जीवन में रहना क्यों पसंद किया जो कर्म बंधन सकाम कर्म का समूल का मूल कारण तथा मानव जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाला है। तात्पर्य भागवत के चतुर्थ स्कंध में ये पांचवा है तो इसके पहले वाले स्कंध में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने बताया है कि नारद मुनि ने प्रियव्रत को किस प्रकार मानव जीवन के उद्देश्य के विषय में पूर्णतया उपदिष्ट किया उपदेश दिया उनको मानव जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करने के पश्चात क्रमशः भगवान के धाम को जाना है जीवन का उद्देश्य ये प्रश्न पूछता है आपको प्रिवो लो आत्म साक्षात्कार करने के पश्चात क्रमशः हरिभो यहां से सुनाई नहीं देता जब नारद मुनि राजा को इस संबंध में पूर्णतया उपदेश दे चुके थे फिर उन्होंने भवबंधन के मूल कारण गृहस्थ जीवन में पुनः प्रवेश क्यों किया महाराज परीक्षित अत्यंत विस्मित थे कि आत्म साक्षात्कार करने वाले तथा भगवान के प्रथम कोटि के भक्त राजा प्रियव्रत गृहस्थ जीवन में कैसे रहे भक्त को गृहस्थ जीवन का कोई आकर्षण नहीं होता किंतु आश्चर्य है कि राजा प्रियव्रत ने गृहस्थ जीवन को उपभोग किया कोई यह तर्क कर सकता है कि गृहस्थ जीवन का उपभोग क्यों अनुचित है इसका उत्तर यह है कि गृहस्थ जीवन में प्राणी कर्म के फल से बंध जाता है। गृहस्थ जीवन का सारा इंद्रिय सुख है और जब तक मनुष्य इंद्रिय सुख प्राप्त करने की दिशा में मन लगाता रहता है तब तक वह कर्म फल से बंधा रहता है। सुन लिया? समझ में आया? सुनते ही समझ में आ गया कि जब तक मनुष्य इंद्रिय सुख प्राप्त करने की दिशा में मन लगाता है तब तक वह कर्म फल से बंधा रहता है। ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते, फिर संगा संजायते कामा, फिर आगे भी है कामात क्रोध हो भी जाए तो हुआ। तो विषयों का ध्यान करने से क्या होता है? ध्यान, विषयों का ध्यान, जिसका भी हम ध्यान करते हैं उसमें हम आसक्त हो जाते हैं, ऐसा नियम है। ध्यायतो विषयान पुंसास, पुंसाम, पुंस पुम मतलब मनुष्य, पुम तो ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते, संगः तेषु उपजायते। संग उत्पन्न होता है तेषु मतलब उनमें, किनमें? ध्यायतो विषयान, विषयों का ध्यान करने से आसक्त किसमें होंगे? विषयों में होंगे। ध्यान अगर हमने भगवान का किया तो वहां भी आसक्त होंगे हम, किसमें? भगवान में आसक्त होंगे। ध्यान रहित जीवन तो संभव नहीं, ध्यान तो रहेगा। करना क्या है? ध्यान का जो विषय है, ध्यान का जो टॉपिक है, ध्यान श्री प्रभुपाद कहते जब ध्यान या मेडिटेशन की जब चर्चा होती है तो सर्वप्रथम प्रश्न ये उठता है कि किसका ध्यान? आई एम मेडिटेटिंग, मैं ध्यान करता, मैं ध्यान लगाता हूं। तो प्रश्न उठना चाहिए कि किसका ध्यान करते हो? ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। तो इसमें सकारात्मक नकारात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव ध्यान, सकारात्मक तो भगवान का ध्यान, अष्टांग योग है उसका अंग है, अंत में ध्यान तक प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अंतिम जो चार सोपान या चार अंग है तो ध्यान समाधि। तो ये पॉजिटिव हुआ, सकारात्मक हुआ। नकारात्मक क्या है? ये विषयों का ध्यान। तो जिसका भी ध्यान करेंगे हम उसे आसक्त होंगे। यम यम वापी स्मरण भावम, ध्यान कहो या स्मरण कहो, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजंती अंते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। तो जिसका भी मृत्यु के समय भी जिसका स्मरण होगा उसी के अनुसार अगला जन्म, अगले जन्म का जो भाव है, भाव मतलब भाव, कृष्ण भावना भाव, तो हुआ, तो जिसका हम ध्यान करेंगे उसी से हम आसक्त होंगे, तो जिसका ध्यान करना है वो अगर भगवान है, भगवान का नाम रूप गुण लीला है, तो क्या होगा, फिर हम आकर्षित होंगे, हम आसक्त होंगे, तो सामने विषय विषय है, इंद्रिय का विषय, ध्यान का विषय कहिए या इंद्रिय का विषय, तो हम उसका ध्यान करते हैं, या तो उसको देखने का विषय है तो देखते हैं, देखने की चीज है ऐसा कुछ कहते हैं लोग, तो क्या करो, बार बार देखो, हजार बार देखो, देखने की चीज है, लेकिन लोगों को पता नहीं देखने की चीज है क्या, किसमें चीज किसमें है, इन्हें खतरे में आ जाते हैं। तो सामने है रूप देखने का तो आंखें देखती है, या वही संगीत है तो कान सुनता है, नाक सूंघता है, तो उससे भी आसक्त होता है व्यक्ति। और इतना ही नहीं, जो मन है वो रूप सामने नहीं भी है, वो साउंड अब तो नहीं सुन रहे हैं, अभी स्पर्श तो नहीं कर सकते, ऐसा कोई सांसारिक व्यक्ति या वस्तु को, तो भी मन तो ध्यान करते रहता है और उससे भी आसक्त होता है। सावधान, तो सामने जब है, समक्ष जब है, प्रत्यक्ष है, प्रतिअक्ष आंखों के समक्ष या कानों के पास ये ध्वनि है या स्पर्श का विषय है, तो उसे सूंघने या सुनने या स्पर्श से तो व्यक्ति आसक्त होता है ही, लेकिन केवल स्मरण मात्र से भी, या पहले का किया हुआ स्पर्श, पहले का किया हुआ दर्शन स्पर्श इत्यादि, उसे भी आसक्त होता है व्यक्ति। समक्ष आई ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों स्थिति में आसक्ति का कारण वो ध्यान, ध्यायतो विषयान पुंसाम, या वह प्रत्यक्ष हो ही रहा है विषय का, ध्यान विषय के संपर्क में होने से, विषय वस्तु के व्यक्ति के, या फिर उसका स्मरण करने मात्र से, उसकी याद से व्यक्ति आसक्त होता है। इसलिए ये जो आध्यात्मिक जीवन है, साधना का जो जीवन है, हरिभव, फिर सोने से क्या होता है, ध्यान होता है, ऑफ हो गया, सोना मतलब ऑफ, कट ऑफ, फिर हो सकता है कोई स्वप्न में कुछ दृश्य हम देखते हैं, पहले का जो स्टॉक है उसमें से कुछ फट करके आता है, प्रभुपाद कहते हैं, ऐसे एक कुआ है या तालाब है और पानी शांत है। अब अचानक क्या होता है, नीचे से एक बुलबुला क्या बुड़बुड़ा बबाव नीचे से आता है, फिर कभी कभी ऐसा सब शांति है, सब स्वच्छ जल है, लेकिन अचानक क्या होता है, एक बबाव और फट जाता है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे थे कि मतलब कई गंदगी है, ऊपर से तो कोई स्वच्छ जल तो दिखाई दे रहा है, तो नॉर्मल जीवन आध्यात्मिक जीवन भी चल रहा है, साधना चल रही है, उसी के मध्य में कोई कोई स्फोट हो जाता है। तो ऊपरी या बाहरी या कुछ समय के लिए शांति या नो प्रॉब्लम ऐसी स्थिति के मध्य में ही कुछ डामाडोल स्थिति हो जाती है कुछ, तो उसका कारण है कि कहीं ना कहीं गहराई में स्कूए के नीचे कहीं तल पर कहीं गंदगी है तो आ जाती। तो हमें समाधान नहीं मानना चाहिए, अब तो एवरीथिंग इज नॉर्मल, अब पहुंच गए, पहुंचे हुए महात्मा है। कैसे महात्मा पहुंचे हुए महात्मा है, तो हम पहुंच गए। तो कोई स्टॉक होता है तो उसको जलाना पड़ता है, सारे जो बीज है जन्म जन्मांतर के, तुमने जो भी किया पाप कर्म किया तो वासना में उसका रूपांतर होता है, वासना बन जाती, कुछ कामना बन जाती उसका बीज। सुप्त अवस्था में और फिर कोई अनुकूल परिस्थिति में कालांतर में फिर वो बीज अंकुरित होता है। किसान बीज का स्टॉक रखते हैं, फिर बीज बो भी देते हैं तो कुछ बीज तो जल्दी उगते हैं, अंकुरित होते, कुछ बीज तो बहुत समय के उपरांत अंकुरित होते हैं, जैसे नारियल बो देने से बीज कई दिन कई हो सकता कई सप्ताह कुछ नहीं दिखाई देता, फिर धीरे धीरे स्लोली धीरे धीरे उगने लगता है, अपना चेहरा दिखाता है। तो साधना जय हो पंडरीनाथ की, राधानाथ की, राधा पंडरीनाथ का दर्शन करते करते हम क्या होंगे, क्या होगा, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। या ध्यान का विषय क्या है, दर्शन, ध्यान का विषय दर्शन है, भगवान का दर्शन करने से कर करके करते 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 क्या होगा, भगवान के रूप से हम आकृष्ट होंगे। तो ये आंखों के लिए हुआ, कान से क्या कर सकते हैं, कान से भी कुछ कर सकते हैं, भगवान के लिए भगवान को सुनेंगे, भगवान को उपदेश सुनेंगे, भगवान का नाम सुनेंगे, वो भी ध्यान हुआ। ध्याय तो विषयान, ये कान का विषय, कोई शब्द है तो उससे फिर पुनः हम आसक्त होंगे। किन से आसक्त होंगे? ये जो श्रवण का विषय है कर्णेन्द्रिय, कर्ण इंद्रिय और सुन रहे भगवान के संबंध में, तो आसक्त किससे होंगे? भगवान के भगवान से होंगे। और वो विषय जो है सुनने का विषय अगर कोई ग्राम कथा है, संसार के कोई लोग है, कोई नट नटी है, उनकी भी चर्चा खूब लोग करते रहते हैं, सुंदर स्त्री पुरुष की वार्ता कथा का श्रवण करने से भी क्या होगा? हम उन्हीं से आसक्त होंगे, ये नियम है। इसमें अचरज वाली है कोई ऐसी? दिस इज अ लॉ, ये नियम है। जिसका ध्यान करोगे, मोटा नियम का, जिसका ध्यान करोगे उससे आसक्त होंगे। वो चार कुमार आ गए, कौन आ गए? चार कुमार आ गए, सनक सनातन सनत और सनंदन, चार कुमार। वे मायापुर में भी आए थे, रुद्रद्वीप में चार कुमार आ गए और ध्यान कर रहे थे। तो वे एक समय विष्णु मंदिर में गए, मंदिर में प्रवेश करते ही वह उन्होंने बस कोई चंदन चर्चित जो भगवान का विग्रह और कोई सुगंधित अगरबत्ती और फूल इत्र इत्यादि जो भगवान को अर्पित किया था, वो चार कुमारों ने प्रवेश करते ही सूंघ लिया। तो क्या हुआ? वे पहले ब्रह्मवादी या अद्वैतवादी, अद्वैतवाद उनका सिद्धांत बना था, किंतु भगवान का वो सुगंध, भगवान को अर्पित किया हुआ चंदन का सुगंध, अगरबत्ती का, फूलों का, पुष्पों का, उनको सूंघने से उन्होंने वो मुक्त हो गए। ये जो भुक्तिकामी, मुक्तिकामी, सिद्धिकामी, मुक्ति की जो कामना थी उनको, मुक्ति की कामना थी उनको, मुक्त होने की कामना, या मुक्त मुक्त मानी ना, स्वयं को मुक्त मान रहे थे, ब्रह्मलीन थे, लेकिन भगवान के मंदिर में आए, उन्हें सूंघ लिया। हा, तो विष्णु भगवान से आकृष्ट हुए, आगे बहुत वैष्णव संप्रदाय के वे आचार्य हो गए। तो चार वैष्णव आचार्य है, चार संप्रदाय है, उसमें एक संप्रदाय है कुमार संप्रदाय। तो पहले वे थोड़े अद्वैतवादी, निर्गुण निराकारवादी, लेकिन भगवान की क्यों नासिका से सूंघ लिया उन्होंने, तो वैष्णव भक्त हो गए, आसक्त हो गए भगवान के और रूप से आकृष्ट हो गए। हिरण भी होता है, हिरण उसको संगीत अच्छा लगता है, तो जो शिकारी होता है वो धनुष बाण भी लेके जाता है और साथ में कोई वाद्य भी लेके जाता है वन में। तो पहले तो बजाता है, मुरली बजाता होगा या कोई, एक तारीख है कुछ बजाता है, फिर हिरण आ जाता है और चरने लगते हैं, उनकी ब्रेकफास्ट भी हो रही है हिरण की और म्यूजिक एंटरटेनमेंट भी चल रही है। तो दूर कहीं चरने के बजाय जहां संगीत हो रहा है या म्यूजिक चल रहा है, वहां आके चरने लगते हैं। ये बेचारे हिरण को कहां पता होता है कि ये संगीत प्रस्तुत करने वाला तो उनका हत्यारा कोई शिकारी ही है। तो तल्लीन होके जब वो चरने लगते हैं सुध-बुध खोके, इतने में क्या करता शिकारी, अपने धनुष बाण को निकालता है, वाद्य को फेंक देता है। तो चर रहे वो तल्लीन होके, तो वो अपना निशाना बनाता है और बेद देता है उनको, फिनिश्ड। तो ये हिरण अपनी जान गवाए किसके कारण, वो संगीत से आसक्त तो नहीं होते, तो उनकी जान बच सकती थी। फिर मछली पकड़ने के लिए जाता है, फेंक देता है, तो हुक होता है, हुक में क्या लगाते हैं, कोई आटा, कुछ मूंगफली। फिर कौन आता है वहां, मछली आ जाती है खाने के लिए, फंस जाती है हुक में, बाहर निकाल दिया, फिर कुकिंग शुरू हो गया मछली। जो उसकी कमजोरी, जो उसकी कमजोरी किसमें है, जिह्वा में, मछली की कमजोरी जिह्वा में है, उस हिरण की कमजोरी कान में है। और कौन है, पतिंगा होता है, पतिंगा मौत, कोई आग आगे देखा तो फिर सोचता ही नहीं है, जस्ट डू इट, दौड़ता है, स्वाहा, स्वयं को समर्पित करता है उस अग्नि में और अपना जीवन समाप्त, खाक राख हो गया। अगर वो सोचता पहले थोड़ा, मैं किसकी ओर दौड़ रहा हूं, वो तो मृत्यु की ओर दौड़ रहा था। उसमें प्रवेश करने से, उसकी ओर दौड़ने से मेरा क्या होगा, मेरी जान जाएगी। तो उस पतंगे के वीकनेस क्या है, उनकी आंखें हैं। फिर हाथी को जब पकड़ना होता है जंगल में, तो हाथीनी को ले जाएंगे, फिर हाथी आकृष्ट होता है, हाथीनी के पीछे आता है, फिर हाथीनी को दौड़ाते हैं, हाथी भी दौड़ता है, दौड़ते 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 हाथीनी दौड़ रही और हाथी भी दौड़ रहा है। और फिर ऐसा एक स्थान होता है या कुआ होता है, बहुत बड़ा गड्ढा होता है, ऊपर से वो डाल देते हैं कुछ कुछ पत्ते, कुछ घास, कुछ शाखाएं, हरी भरी हरी भरी पेड़ की। तो वहां पहुंचने पर हाथीनी को थोड़ा डाइवर्ट करते हैं, बगल से ऐसे ले जाते हैं, लेकिन पीछे से जो स्पीड से आ रहा है हाथी, क्या करता है, वो सीधे आगे बढ़ता है, तो कहां पहुंचता है, गड्ढे में गया। खड़े हो जाओ, तो आधा खड़ा हो गया, कितना खड़ा हुआ, 6 इंच। तो हुआ इसकी कमजोरी, और कौन सी पार्टी है, नासिका के लिए कौन है, भ्रमर, अच्छा ओके गुड, भ्रमर भ्रमर बम्बल बी भ्रमर। तो सूंघती हुई, सूंघने के लिए किसी फूल में प्रवेश कर लिया, सूंघ रही है, इतने में संध्या काल हो गई, तो तो कुछ फूल क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते, उसको बंदी बना आ गया और उस रात में उसकी जान चली गई। तो प्राणी या इस पशु पक्षी समाज में देखते हैं कोई एक इंद्रिय की कमजोरी के कारण वो अपनी जान खो देते हैं। तो क्या फिर मनुष्य की कमजोरी तो उसकी सारी इंद्रिय कमजोर है? यहां तो मछली का एक इंद्रिय कमजोर है और पतंगे का ये दूसरा इंद्रिय कमजोर, एक इंद्रिय कमजोर है, हिरण का और एक एक ही कमजोर है। लेकिन अगर एक ही साथ सभी अगर इंद्रिय कमजोर है तो फिर क्या होगा, कितने बार उसकी जान चली जाएगी? और इसीलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम बहुनाम जन्मनाम अंते ही जो क्यों होता क्यों है, क्योंकि ध्यायतो विषयान पुंसाम। कम से कम मनुष्य योनि में, अन्य योनि में तो देयर इज नो सेंस कंट्रोल का तो कोई प्रश्न ही, कोई उपदेश नहीं है। कुत्ते के लिए कोई उपदेश है? वो भी आकृष्ट होता है कुतिया से या कबूतर, वहां कोई उपदेश का प्रश्न ही नहीं है, समझ में नहीं आएगा। ये उपदेश है किसके लिए? केवल मनुष्यों के लिए है। और वैसे सभी मनुष्य भी नहीं है, मतलब जो दिखाई तो देते हैं लेकिन सिविलाइज नहीं है, सभ्य नहीं है। जैसे कलम मनुष्यानाम चतुर्लक्षानाम का 4 लाख प्रकार की योनि है, उसमें से 1 लाख सभ्य योनि है, मनुष्य योनि। मतलब वही ये जो विषय वस्तु है धर्म, ये सभ्य मनुष्यों की समझ में आने वाली बातें हैं। तो वाह, इसलिए हम लोग आश्रम में रहते हैं। फिर आश्रम थोड़ा शहर से दूर है, क्यों बाहर क्यों रहते हैं हम लोग, दूर क्यों रहते हैं? इकट्ठे रहते हैं या दरवाजे खिड़की या कब बंद कर देते हैं हम लोग? उद्देश्य क्या होता है, क्या उद्देश्य? विषयों से बचने के लिए, विषय वा विषय से दूर, असत्संग त्यागात यही वैष्णव आचार का है। असत्संग त्यागात तो असत असत्संग त्याग, इसीलिए हम लोग दूर रहते हैं, थोड़े हट के रहते हैं, कुछ सेफर डिस्टेंस के रहते। कई बार गाड़ी के पीछे लिखा होता है क्या, कीप डिस्टेंस, कीप डिस्टेंस, सुरक्षा के लिए, आपके सुरक्षा के लिए, आपके हित की बात है, थोड़ा दूर रहो। तो हम दूर रहते थोड़ा। साधु सावधान, साधु क्या सावधान, सावधान भी लिखा होता है, तो सावधानी पूर्वक संत मंडली भक्त मंडली साधक अन्यों का जो समाज है उनके प्रचार के लिए वहां जाते हैं, लेकिन सावधानी से जाते हैं, सावधानी से रहते हैं उनके संग में, ताकि हम लोग निकल पाए। क्या हुआ? जब कीचड़ का कीचड़ होता है वर्षा के दिनों में, तो कीचड़ से जो चलना पड़ता है उसकी भी कला है ताकि हम लोग फंसेंगे नहीं। तो पैर, एक पैर तो अंदर है कीचड़ में ही कुछ धसा हुआ है, तो दूसरे पैर से हम क्या करते हैं, उतना ही नीचे जाने देते हैं और साथ साथ दूसरे को निकालते हैं, देखते कि ज्यादा अंदर धसे नहीं, क्योंकि निकालना है पुनः। बड़े सावधानी से चलते हैं, नहीं तो एक पैर इतना धस जाएगा कि निकल ही नहीं। तो कहीं जाना पड़ता है प्रचार के लिए, तो सावधानी से जब हम कीचड़ के क्षेत्र से चलते हैं, सावधानी से चलते हैं। ना ना वो था, वो क्या, वो कौन था, सीआर, सीआर को अंगूर अच्छे लगते हैं क्या? हाँ, कोला, कोला। तो एक किसान ने, उसके अंगूर का खेत था, एक सीआर आया करता था, अंगूर खा के फिर भाग जाता। तो उसको पकड़ने के लिए, उसको रोकने के लिए सीआर को, उस किसान ने आटा गोंद लिया और एक बड़े टोकरी में प्रवेश द्वार पर रख दिया। जैसे ही सीआर आ रहा था, उसका एक पीछे का पैर फंस गया। तो उसने सर, जैसे एक ही पैर फंस गया मेरा, तो मैं क्या करूंगा? उसने सोचा कि अब दूसरे पैर से मैं थोड़ा अंदर दबा लूंगा, तो इसको निकाल दूंगा फिर, और पुश विद वन हाइंड लेग एंड पुल दिस आउट। समझ रहे आप? वैसे कीचड़ वाली बात, कीचड़ में फंस नहीं फंसने के लिए कैसे, तो ये सदा एक ही तो पैर फंसा है, तो अब दूसरे पैर के उपयोग से मैं नीचे दबाव लूंगा पैर से और इसको बाहर निकालूंगा। ऐसा प्रयास कर रहा था, लेकिन वो उसके दोनों पैर फंस गए। तो सोचा नो प्रॉब्लम, अब तो केवल पीछे के ही दो पैर फंसे हुए हैं, आगे के पैर तो फ्री है। उसने सोचा कि अब आगे के पैरों से मैं अभी उस आटे को थोड़ा दबा लूंगा और पीछे के पैर से निकाल लूंगा। ऐसे करते समय उसके आगे के पैर भी फंस गए। तो अभी वो सोच रहा, नो प्रॉब्लम, अब क्या करूंगा, मेरा सिर तो फ्री है, तो मैं मुख से क्या करूंगा? आप समझ रहे हैं कैसे, क्या कैसा सोचता होगा? मैं दबा लूंगा अभी मुंह से और चारों के चारों पैर मेरे बाहर निकाल लूंगा, तो फिर छलांग मार के अंदर जाना ही मुझे। तो उसने जो प्रयास किया दबाने का, सावधानी से दबा रहा था, लेकिन उसका मुख भी फंस गया, चार पैर तो फंस चुके थे ही। इतने में किसान आ गया डंडा लेके और सियार की रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया उसने, उसको समाप्त किया। तो कोई व्यक्ति कभी सोचा, नो प्रॉब्लम, थोड़ा ही तो फंसा हूं अभी, और मेरे पास और कोई युक्ति है, और कोई साधन से मैं उससे मुक्त हो जाऊंगा। वैसे गृहस्थ आश्रम, इसकी यह चर्चा है, इसको यहां कहा है, गृहे अरमत यन्मूलः कर्म बंधः, कर्म बंधन का मूल कारण ये गृहस्थ आश्रम। वहां माया के फेस टू फेस दूर जाने का प्रश्न नहीं है, वही रहना पड़ता है। और वैसे स्थिति में स्वयं को भव बंधनों से बचाना ये बहुत बड़ी कला और शास्त्र है। तो वाह, कई बार हम योजना बनाते हैं, ज्यादा तो नहीं फंसा हूं, और भी कुछ करूंगा मैं ताकि मुक्त हो जाऊंगा, कहते थे, लेकिन दूसरा जो करते वो भी हमारे बंधन का ही कारण बनता है। फिर और अभी तो हाथ बचा, अभी तो पैर बचा, अभी तो ये बचा, अभी तो ये बचा, अभी तो, और धीरे धीरे पूरा फंस सकता है। ऐसे गृहस्थ आश्रम के वातावरण में क्यों प्रवेश किए प्रिय व्रत, स्वयं थे भागवत आत्माराम, कथम कैसे क्यों उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, तो सब समय ध्यान देना पड़ता है, हम क्या सोच रहे हैं, किसका चिंतन हो रहा है। वही चिंतन या तो हमारे मुक्ति का कारण या हमारे बंधन का कारण। चिंतन या स्मरण किससे होता है, किससे हम लोग नाक से स्मरण करते हैं कि मन से, स्मरण मन से होता है, स्मरण होता है मन से। तो वह मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, तो मन ही हमारे या तो मुक्ति का या तो बंधन का कारण मन है। उद्धरेदात्मनो आत्मानम नात्मानम अवसादयेत, आत्मैव आत्मना बंधु आत्मैव रिपुरात्मना, भगवान कहते। तो खुद को, बस हम भक्तों के संग में है तो और भक्त हमारी मदद कर सकते हैं, ये संग संगति में सत्संगति में रहने का ये लाभ है। हमसे कोई गलती हो रही है, कोई अभाव है, कोई त्रुटि है, हम गिर रहे हैं, हमारा पतन हो रहा है कहीं पर किसी क्षेत्र में, और जिसका खुद को पता नहीं है, स्वयं नहीं समझ रहे हैं, कई बार हमको बुखार भी होता है, खुद को पता नहीं चलता, दूसरा व्यक्ति जो स्पर्श करे कि आप फीवर, उनको तो बुखार है सर, कई बार कहते हैं, तो हम कई बार रूटीन ऐसा लाइफ बन जाता है, इसमें से कोई गलत कदम भी हम उठाते होंगे, कुछ कार्य हो जिसको हमको खुद को पता नहीं होता है। तो अगर हम भक्तों के संगति में है तो पता चलता, फिर भक्त बता सकता है बोधयंतः परस्परम, कृष्ण कहते भगवत बोधयंतः परस्परम, परस्परम एक दूसरों को बोध करते हैं भक्त, ए प्रभुपाद सेड यू नो, प्रभुपाद ने कहा, झट से कहे ए गीता में ऐसे कहा है, अगर फिर हम अकेले हैं या गृहस्थ जीवन में है, अकेले हैं तो कौन है बताने वाला। तो अकेले होना थोड़ा भयानक या खतरनाक स्थिति है। हम जब लाइफ मेंबरशिप के लिए जाते थे बंबई में श्रील प्रभुपाद के समय उन दिनों में, तो प्रभुपाद ने सिस्टम बनाए अब दो दो मिलके जाना प्रचार में ताकि आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको शक्ति मिलेगी, या दोनों में से एक कमजोर है तो दूसरा मदद कर सकता है, माया से बचा सकता है, लेकिन अकेला ही है तो फिर माया एक और तुम दो है तो फिर तुम्हारी पार्टी बड़ी हो गई ना। तुम दो हो या अनेक हो, माया एक है, लेकिन माया एक और तुम एक अकेले, फिर उसके साथ टकराना कभी मुश्किल हो सकता है, उनको परास्त कर सकती है वो माया। लेकिन भक्त पास में है तो माया दूर रहेगी। जहार निकटे गेला पापे दूरे जाए, ऐसा वैष्णव का महिमा गाए हैं हमारे आचार्य। वैष्णव कैसे है? जिनके पास जाने से, वैष्णव के पास जाने से पापे दूरे जाए, पाप दूर जाता है या पाप की वासना दूर जाती, पाप के विचार नहीं आते, दूर रहते हैं। फिर वैष्णव के साथ ही रहो तो सदा के लिए दूर रह जाएंगे, दूर रह रह के वो थक जाएंगे वासना, और एक दिन क्या करेगी फिर वासना, सदा के लिए दूर चली जाएगी। तो वासना वो माया तो प्रतीक्षा करती रहती है, महाराज 300,000 जप करने का मैंने संकल्प लिया है। बेलगांव में भक्त नाटक कर रहे थे और पूर्णिमा के दिन हरिदास ठाकुर, लिल बिट मोर, थोड़ा ही जब बाकी है, बैठो तुम बैठो, तो माया को रोक के रखा। हरिदास माया जब करना है तुम बैठो बैठो, प्रतीक्षा करती रही बेचारी, प्रतीक्षा करती रही, नॉट नाउ, बाद में देखा जाएगा। तो रात भर हरिदास ठाकुर जब ही करते रहे। दूसरे सायंकाल को आ गई, आज भी थोड़ा, आज तो जल्दी हो जाएगा जब मेरा, बैठी रहो, बिठा के रखा। हरिदास ठाकुर जब कर रहे थे, जब चलता रहा, जब चलता रहा। दूसरी रात भी बीत गई, हरिदास ठाकुर का जब तो चलता ही रहा। फिर तीसरी रात के फिर अंत में, अंत तक इनका जब तो चल ही रहा था, तो पोस्टपोन किया जा सकता है, बाद में देखते, बाद में, नॉट नाउ, आई एम बिजी। अगर हम बता सकते हैं माया को, आई एम बिजी, आई एम व्यस्त हूं, मैं हूं, आई एम नॉट फ्री, देख नहीं रहे हो क्या, आई एम चैंटिंग, मैं जप कर रहा हूं, तो जप करना मतलब व्यस्त होना, आई एम बिजी। जैसे मेरे अध्यक्ष भी मुझे कहे थे, बंबई के टेंपल प्रेसिडेंट मेरे अध्यक्ष थे, मैं जब कुछ नया भक्त ही था या एक दो साल पुराना डिवोटी था, तो एक दिन एक मेंबर मिलने आए, वो मिलना चाहते थे, अध्यक्ष महोदय है आपके, तो मुझसे मुलाकात हुई उस आजीवन सदस्य की। तो मैंने कहा कि मैं देख के आता हूं, तो मंदिर में गया तो हमारे टेंपल प्रेसिडेंट जब कर रहे थे, तो मैंने कहा कि अमुक अमुक को लाइफ मेंबर आए आपसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ओ आई एम बिजी, टेल हिम आई एम बिजी, उनको कहो कि मुझसे कहे वे, उनको बताना कि मैं व्यस्त हूं। उस समय मैंने सोचा आप तो व्यस्त नहीं हो, यू आर नॉट बिजी, तुम तो केवल बैठ के जप ही कर रहे हो, यू आर नॉट बिजी। उन्होंने कहा था कि आई एम बिजी, मैं सोच रहा था कि ये बिजी नहीं है, ये तो केवल जप ही तो कर रहे हैं, ये तो कोई बिजनेस नहीं है, इट्स नॉट अस। तो मेरे विचार, मैंने सुनाए तो नहीं मेरे अध्यक्ष को, मैं सोच रहा था कि नहीं नहीं यू आर नॉट बिजी, ऐसे आप मिलना नहीं चाहते उनको, इसीलिए बहाना बता रहे हो, कुछ एक्सक्यूज बता रहे हो कि मुझे हाँ उनको बता दो मैं बिजी हूं, ऐसा मैं सोच रहा था थोड़ा। लेकिन फिर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम मैं थोड़ा इसे समझ गया, मुझे साक्षात्कार हुआ, कहो कि कोई व्यक्ति बैठ के ध्यान पूर्वक या प्रयास कर रहा है ध्यान पूर्वक जप करने का, तो उसको क्या मानना चाहिए, वो व्यस्त है, ही इज बिजी। और कोई व्यक्ति बैठा है, दो आपस में बात कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है, तो उसको तो हम बिजी मानते हैं हा? लेकिन कोई व्यक्ति जप ही कर रहा है, जब व्यक्ति जप कर रहा है तो क्या वो अकेला होता है क्या? जप करने वाला व्यक्ति अकेला नहीं होता, उसका भी संवाद जारी होता है, उसका डायलॉग, उसका कौन होता है, दूसरा व्यक्ति कौन होता है जिनके साथ वो रहता है जप करता, भक्त, भगवान। तो कोई जप कर रहा है मतलब उसको अपॉइंटमेंट मिली है, ही हैज अपॉइंटमेंट विद कृष्णा, कृष्ण के साथ अपॉइंटमेंट है उसकी, भगवान के साथ है वो, या भगवान का साथ चाहता है या प्रयास कर रहा है अधिक अधिक भगवान के पास आने का, सेवा के लिए प्रार्थना कर रहा है, माम माम रमस्व, मेरे साथ रमिए ना प्रभु, ऐसा भी एक भाव है, मेरे साथ रमिए, यार अर गृहे अरमत यन्मूलहा, रम धातु का यह भी प्रयोग हुआ है, गृहे अरमत, घर में रमते हैं गृहस्थ, गृहे अरमत, और वो घर में रमना ही क्या है, कर्म बंधन का कारण है, ग्रह में रममान होने का कारण क्या है या उसका परिणाम क्या है, भव बंधन, ग्रह कर्म बंधन, वो मूल कारण बंधन का। तो फिर हरिदास ठाकुर तीसरी रात्रि को, वे तो व्यस्त थे, बिजी थे और जप कर रहे थे, और माया को उन्होंने दूर रखा, सेफ डिस्टेंस, और पास में बैठी थी, लेकिन वो पास में बैठी तो थी लेकिन तो भी वे वैसे दूर थी पास में, लेकिन उनके मन में तो थी नहीं, वो पास में थी लेकिन मन में नहीं थी, इसीलिए वो दूर ही थी। तो हम कह रहे थे कि हम थोड़ा आश्रम में रहते हैं, गांव से शहर से दूर रहते हैं, या गांव में या शहर में ही हमारा आश्रम है, तो हम भी थोड़े इकट्ठे रहते हैं, साथ में रहते हैं, हम अपने ही जगत में रहते हैं, सारी दुनिया अभी तक सोई पड़ी है, तो हम लोग क्या करते हैं, जग जाते हैं और अपना संसार दावान ललीर लोका का गान करते हैं, गुरु की स्तुति गाते हैं, धन्यवाद देते हैं उनको।
कीर्तन करते हैं, जप करते हैं। भागवत का श्रवण करते हैं और ये सब करते वक्त ये सब का तो भगवान के साथ संबंध है। भगवान के समक्ष ही खड़े होते हम लोग दर्शन करते हैं तो उससे भगवान से आसक्त, तुलसी की वंदना करते हैं तुलसी से आसक्ति हम बढ़ाना चाहते हैं, जो भगवान की आराधना केवल आराधना नाम सर्वेषाम विष्णु आराध्यते परम। और फिर आगे तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। तो ये तुलसी तदीय है, तदीय मदीय तदीय होता तदीय मन कौन के तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। तो भगवान की आराधना तो श्रेष्ठ है किंतु भगवान के संबंधित जो है उनकी आराधना तो भगवान की आराधना से भी श्रेष्ठ। शिव जी ने कहा, शिव जी ने पार्वती से कहा, सभी आराध्य देवों में विष्णु आराध्य परम आराध्य है और उससे भी उनसे भी अधिक ऊंची आराधना है तदीयानाम समर्चनम। तो तुलसी की आराधना हम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। मोरई अभिलाष विलास कुंजे दिवो वास, मोरई मेरी अभिलाषा है ये तुलसी देवी, क्या करो कुंजों में विलास कुंजों में मुझे वास दो, मेरा निवास हो विलास कुंजों में। तो इन सब से फिर श्रवण कीर्तन फिर शिल्पोपाद गुरु पूजा फिर पुनः भगवान का दर्शन, पुनः बैठते हैं श्रवण करते हैं भगवान के नाम रूप गुण लीला का। तो ये सारा प्रयास भगवान से आसक्त होने का, भगवान से संबंधित संबंध स्थापित करने का है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा, तो संसार के जो कर्म बंधन है गृहस्थों के लिए औरों यानी कि और आश्रमों में बंधन नहीं है, बंधन के कारण नहीं है, तो सभी आश्रमवासियों के लिए विधान बताया। असंग शस्त्रेण, असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्वा, काट लो जो भव बंधन है कर्म बंधन है उसको क्या करो काटो काटो। तो कौन सा हथियार कौन सा शस्त्र कहा भगवान ने यहां, असंग असंग शस्त्र, एक संग और दूसरा असंग, असत्संग त्यागात वही बात है, असत्संग त्यागात अनासक्ति, अनासक्ति वैराग्य, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, ये शस्त्र है दूर रहने की, सेफ डिस्टेंस वाली बात है। और तात्पर्य है क्या, तो कोई प्रश्न है तुम चाह तो रहे हो, चाहते तो हो, तुम तो जरूर आएगा। जैसे सुनते जाएंगे तो सुनते रहो, वो तो मीठा है भागवत, भागवत अमृत महत, स्वादु स्वादु पदे पदे। तुमको आस्वादन या स्वाद नहीं आ रहा तो भागवत का तो कोई कसूर नहीं है। भागवत जैसे था 5000 वर्ष पूर्व, वो भागवत अब भी है। जितना उस समय मीठा था अब भी उतना ही मीठा अब भी है। तो सुनते जाओ श्रद्धा पूर्वक और मनन करते जाओ। वो जो धुंधकारी थे उनका तो उद्धार हो रहा था। गोकर्ण ने कथा सुनाई, कथा तो कईयों ने सुनी लेकिन भगवान तो या भगवान के पार्षद तो केवल एक ही व्यक्ति को भगवत धाम ले जा रहे थे। तो गोकर्ण जो वक्ता थे उस कथा के, उन्होंने पूछा उन हरिदासों से जो वैकुंठ से आए थे, उन्होंने पूछा क्यों क्या हुआ। वक्ता तो एक ही, मैं वक्ता हूं और मैंने तो सभी को एक ही कथा सुनाई, सभी श्रोता मुझ एक वक्ता की वही कथा को, भागवत कथा को सुन रहे थे और उसकी कथा का भी समापन हो रहा है, तो आप तो केवल एक ही व्यक्ति को भगवत धाम ले जा रहे हो, सबको क्यों नहीं, क्या भेद हुआ, क्या अंतर रहा, एक ही व्यक्ति कैसे क्वालिफाइड अधिकारी बना। तो उस समय उन हरिदासों ने कहा, कथा केवल सुन ली और फिर उठ के खड़े हुए और फिर कथा की ओर अपनी पीठ नहीं करनी होती है, पीछे मुड़ कथा के स्थान पर हम चले। तो उन्होंने मनन का उपयोग किया, मनन, और लोगों ने मनन नहीं किया। ये जो धुंधकारी था कथा को सुनता भी था, कथा के उपरांत उसका मनन करता था, उसी विषय वस्तु को पुनः पुनः मन में लाता था, उसका ध्यान करता था और बड़े श्रद्धा से सुनता था। ऐसे कई बातें उन्होंने कही, मुख्य मुख्य बात ये, मनन की और श्रद्धा की, ध्यान पूर्वक श्रवण की, तो सभी तो सुनने श्रोताओं में भी अंतर है, वही कथा हो रही है, तो कोई ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुन भी रहे, कुछ तो मन में कई सारे प्रश्न या अश्रद्धा या घड़ी की ओर देख रहे हैं या जब समाप्त हुई कथा तो खुशियां मनाएंगे, फाइनली समाप्त हो गई, थैंक यू महाराज। तो या वही हमारी बीमारी है, जब काबिली मराठी में काबिली कामिनी काबिली जॉन्डिस पीलिया रोग होता है तो उसकी आंखें भी पीली हो जाती है। तो वो फिर डॉक्टर कहते आपको क्या खाना होगा, शुगर कैंडी मिश्री खाने से फिर आप बीमारी से मुक्त होंगे। तो मरीज जब खाता है तो कड़वा लगता है, मिश्री तो मीठी है लेकिन वो मरीज है, बीमार है, रोगी है, पीलिया रोगी, वो थूकता है ना इतना, डॉक्टर साहब कोई दूसरी दवा हो तो दीजिए, डॉक्टर दे और कोई दवा नहीं है, बस ठीक होना है तो बस इसी को खाना। फिर जब कोई पर्याय नहीं है, जब समझता है ये व्यक्ति, फिर डॉक्टर पर श्रद्धा रख के जब मिश्री को खाने लगता है तो क्या होता है, उसका जो बीमारी है वो कम होती है, और जितनी कम हुई बीमारी उतना ही उसका स्वाद आने लगता है उस मिश्री का, फिर और खाता है, थोड़ा स्वाद आ गया और खाता है और ग्रहण करते रहता है, उसका डोज लेते रहता है, तो उसी के साथ और बीमारी से मुक्त होता है, फिर और खाने लगता है और रोग से मुक्त होता है, और खाता है और स्वाद आता है उसको। तो फिर एक दिन आता है तो कहते हैं भाई और ले आओ ब्रिंग मोर और मिश्री ले आओ, अब तो बीमारी नहीं रही। तो ये हरि नाम के संबंध में भी यही कहा है, या हरि कथा के संबंध में भी यही कहा जा सकता है, स्वाद नहीं है तो बस, जैसे मिश्री का कोई कसूर नहीं था तो हरि नाम मीठा है, कथा मीठी है, क्योंकि भगवान की कथा तो भगवान मधुरम मधुरम अधरम मधुरम सब मधुरम मधुराधिपतिर, क्योंकि हमें जो रोग है भव रोग ऋत रोग, लेकिन और कोई पर्याय है नहीं, हरिर्नामैव केवलम हरिर्नामैव केवलम श्रीमद् भागवत कथा केवलम, तो उसी का श्रवण करते जाएंगे तो उसी के साथ ऋत रोग से मुक्त होंगे, काम रोग से मुक्त होंगे, और फिर भगवान स्वयं को प्रकाशित करेंगे, साक्षात्कार होगा, विश्वास आएगा, ये तो साक्षात भगवान है, ये भागवत ही भगवान है। भगवान के सानिध्य में फिर आनंद ही आनंद। हमको फीवर है और कोई बता नहीं रहा खेती पृछति ददाति प्रतिगृहति षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये प्रीति का लक्षण है वैष्णव के आपसी का मैत्री का ये लक्षण है कि वे एक दूसरे को बताएंगे, कोई खुशी की बात है, कोई साक्षात्कार है तो बताएंगे, और कोई कठिनाई है या बुखार, मतलब बुखार वाली बात नहीं, बुखार तो माया का ज्वर, तो क्या तो खुद बताएगा या दूसरा वैष्णव पता लगवाएगा, नहीं बताने पर भी पता लगवा सकता है। आदर्श समाज भक्तों का, वैष्णवों का समाज, या उसमें तो ये इस प्रकार की लेन देन होती रहेगी, होनी चाहिए। बोधयन्तः परस्परम्, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड भी कहते हैं, वो हमारा असली मित्र है। हम जब समस्या में है, हम जब समस्या में उस समय जो मदद करेगा वही हमारा इट्स अ गुड फ्रेंड, रियल फ्रेंड। ऐसी फ्रेंडशिप तो भक्तों के भगवान से, भगवान से प्रेम, भक्तों से मैत्री, श्रद्धालु लोगों की सहायता, उन पर दया करुणा और जो है अश्रद्धालु उनकी उपेक्षा, इस प्रकार का मध्यम अधिकारी भक्तों का ये चार प्रकार का व्यवहार होता है। भगवान से प्रेम, भक्तों से मैत्री का व्यवहार, तो उसके अंतर्गत ये एक दूसरों की पूछताछ, प्रीष्ट गोष्ठी है, उसमें या तो पता लगवाएंगे या बताएंगे, कई कई पर काउंसिलर सिस्टम है, सलाहकार सलाह लेने देने वाले भक्त है, तो कई मंच है, कई फोरम्स है, इष्ट गोष्ठी, जनरल भक्तों का मिलना जुलना, गोयम अख्यति पृछति। तो पता तो लग जाएगा फीवर का या कोई मंगल आरती में नहीं आ रहा है, कोई क्या, ये भी लक्षण है, कोई फीवर है, कोई या फीवर नहीं होते हुए भी कि बुखार तो नहीं है, उसका टेम्परेचर भी नहीं है और मंगल आरती भी नहीं है, मतलब दूसरा कोई फीवर, कोई माया का फीवर, ऐसे कोई लक्षणों से पता लगवाया जा सकता है व्यक्ति की कोई क्रिया, कोई मुद्रा, कोई वाचा, कोई भाव, चाल, काय न मनसा वाचा, आउट ऑफ ऑर्डर है वो, आउट ऑफ, कोई गुमराह हो रहा है, पथभ्रष्ट हो रहा है, तो उसका पता चलता है जो लक्षण जानते हैं, अच्छे भक्ति के लक्षण और दूसरे जो अभक्त, तो जिनको लक्षण पता है वो पहचान सकते हैं, या तो कोई फिजिकल फीवर की बात, शरीर के बुखार की बात, तो पता चलता है व्यक्ति के चलते बैठते उठते, इसका आहार कितना लेता है, इतना नहीं है, नहीं। सारा रेगुलेटेड लाइफ है, तो जो फॉलो कर रहा है उसका पता चलता है, नो फॉलो नहीं कर रहा है, मंगल आरती में नहीं आया, या जब के लिए तो सभी बैठे हैं, वो व्यक्ति नहीं बैठा है, कोई तो कई दिन नहीं बैठ रहा, कई दिनों से नहीं बैठ रहा है, हर रोज सोता रहता है, सम प्रॉब्लम, इतना खाता गोवर्धन पहाड़ उसके थाली में, समथिंग रॉन्ग, दिन में सोते रहता है, क्या क्या उसका एक्सपेंडिचर, ऐसा बिल लेके आता है कुछ, ये कर्मियों के साथ उसका खूब जमता है, उनके साथ अधिक समय बिताता है, ऐसे कई लक्षण, सो मैनी, ये कुछ बुखार के, कुछ आध्यात्मिक बीमारी के कुछ लक्षणों से शास्त्र चक्षुषा, शास्त्रों का चश्मा पहन के कोई व्यक्ति पता लगवा सकता है या कोई समस्या है। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर कहते थे, या कई थोड़ा धुआं है तो कई आग भी हो सकती है, केवल धुआं ही दिखाई दे रहा है लेकिन कुछ अनुमान लगाया जा सकता, धुआं है तो फिर वहां कई शायद आग भी हो सकती है, तो ये कुछ दिखाई दे रहा है लक्षण, तो उसके नीचे पीछे बहुत कुछ धधक रहा है, कुछ आग है, कुछ ज्वाला है, कुछ है, कुछ स्टॉप प्रसाद आपको सभी को लेना है और एनी अदर प्रैक्टिकल, राज दोपहर को जाऊंगा मैं सोलापुर आज हमारी कोर्ट केस भी है, आप सब प्रार्थना करो, विशेष दिन है, कचहरी का मामला है, सत्यमेव जयते। और भूमि चाहिए कि नहीं, और जमीन चाहिए कि नहीं, आपकी अगर इच्छा है तो फिर भगवान विचार कर सकते हैं, लेकिन आप में अगर वैराग्य उत्पन्न हुआ है
भगवान के लिए, भूमि सभी भोग भगवान के लिए। तो कई सालों से चक्रधर प्रभु वगैरह लगे हुए हैं, तो आज विशेष फैसला या कुछ बात आगे बढ़ने की बात है। शहर में भी जगह मिलने की संभावना है, वो पता चला कि नहीं? दत्त घाट से आगे बताया कि नहीं? पंढरपुर का जो परिक्रमा मार्ग, पंढरपुर का अंदर का जो परिक्रमा मार्ग, नंद यशोदा मंदिर, यशोदा नंद, यशोदा यशोदा नंद, नंद यशोदा मंदिर है वहां। निम्बार्क आचार्य संप्रदाय का भी एक मंदिर एक बगल में है और नंद यशोदा का मंदिर दूसरे तरफ है, और बीच में हरे कृष्ण मंदिर होगा। मंदिर तो यह होगा, लेकिन वहां कुछ गोविंदस रेस्टोरेंट, आईवाईएफ के लिए प्रीचिंग सेंटर, कोई हॉल, कोई गेस्ट हाउस, कुछ कमरे, कुछ वहां से यहां भेजा जाएगा लोगों को। फिर हमें कोई स्थान चाहिए था शहर में, तो भगवान कुछ योजना बना रहे हैं। कोई किसी के मन में इच्छा भगवान ने जगाई है और अच्छा लोकेशन है, कई मंजिल वहां बना सकते हैं, मंजिल है वो भी जगह है, और भी पड़ोस में भी है यहाँ और भी एक जगह है, तो तीन चार जगह की तैयारियां कुछ चल रही है। शोलापुर में रथ यात्रा है 27 तारीख गुड़ी पाड़वा, तो आप जाओ, बड़ी संख्या में शोभा बढ़ाओ रथ यात्रा की। उस दिन मैं तो बांग्लादेश में रहूंगा, बांग्लादेश जा रहा हूं पहली बार मैं इस कौन का बड़ा बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, रूप सनातन, और कई चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के कई पार्षदों के वहां जन्मस्थल, या चैतन्य महाप्रभु भी गए थे बांग्लादेश, तो थोड़ी तीर्थ यात्रा भी होगी, प्रोग्राम है वहां। चैत्र एकादशी कब है? पता नहीं है? तो चैत्र एकादशी, चैत्री एकादशी 22nd of this month. अच्छा, तो दो दिंडिया आ रही है, एक तो आरवड़े से तो हर साल आती रहती है, कई सालों से आरवड़े से दिंडी आती है एक चैत्री एकादशी को, इस साल तो नांदेड़ से, लातूर से ऐसे भक्त दूसरी एक दिंडी ला रहे हैं, तो दो दिंडी मतलब पदयात्रा, हरिभव पदयात्रा, तो नांदेड़ पहले सेम पार्टी, नांदेड़ से लातूर, लातूर से पंढरपुर, फिर आषाढ़ी एकादशी का उत्सव की भी तैयारी करनी, फिर पुणे से दिल्ली आएगी। और क्या, राधा पंडरीनाथ के ब्रह्मोत्सव, पांचवा ब्रह्मोत्सव राधाष्टमी के समय होगा, बहुत बड़ा उत्सव मनाएंगे। उस वक्त पदयात्रा भी आएगी, ऑल इंडिया पदयात्रा पहुंचेगी यहां, और कई दिनों का उत्सव महाअभिषेक होगा भगवान का, राधा पंडरीनाथ के उनका अभिषेक करेंगे, महाअभिषेक। जैसे इस साल मायापुर में भी पंचतत्व अभिषेक हुआ, 5 साल हुए पंचतत्व की स्थापना को, और कुछ सेमिनार्स उत्सव होगा, कई सारे पुराने पदयात्रियों को बुलाएंगे, इष्टदेव को बुलाएंगे, वो पदयात्रा में था, क्यों जो थे जो आ सकते हैं जो इंडिया में है। और हो सकता है उस समय कुछ चैतन्य महाप्रभु के जो चरण चिन्ह है उनकी स्थापना, तभी परिक्रमा मार्ग पर है, पीछे आप जानते हो दर्शन करते हो आप हर रोज, तो उनकी स्थापना कई की जा सकती है। पदयात्रा जब 86 में मायापुर पहुंची, द्वारका से कन्याकुमारी से मायापुर, 86 की बात है, तो उस समय भी मायापुर में चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों की स्थापना हुई थी। तुम्हारे पास चरण चिन्ह तो है, लेकिन अलग से कोई श्राइन छोटा सा उन्हीं के साथ हो सकता है। हम लोग विचार कर रहे थे कल प्रहलाद प्रभु के साथ वगैरह, नित्यानंद प्रभु भी आए थे पंढरपुर, और विश्वरूप भी आए थे, तो इन तीनों के चरण चिन्हों की स्थापना भी हो सकती है, ऐसा भी हम विचार कर रहे हैं। इस प्रकार कई सारे उत्सव, होने वाले हैं आपके धाम में। ट्रैवलिंग पार्टी वगैरह, बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी करो। और कोई न्यूज़ या सब ठीक चल रहा है? ठीक है ना।